HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम शरत है और आपका दिल से स्वागत करता हूं बाउंस बैक भारत के सेकंड सीजन में। और इस बार का पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से भी कमाल है। देखिए, इस कोविड ने हम सबको एक ऐसे सिचुएशन में डाला, एक ऐसी स्थिति में डाला जहां से हम सब बाउंस बैक करना चाहते हैं और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। सो वी क्रिएटेड द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज, OTT स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस लीडर्स। इंडिया का हर बड़ा आइकन इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है एंड दे आर टेलिंग अस हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। है ना इंटरेस्टिंग? तो शुरू करें सिलसिला बाउंस बैक भारत का।
सुनील ग्रोवर हमारे साथ हैं बाउंस बैक भारत फेस्ट में। सुनील कैसे हैं आप?
मैं अच्छा हूं निशांत, आप कैसे हैं?
बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जितने लोग आपसे सवाल पूछते हैं उन सवालों पे सबसे आखिर में आए या सबसे शुरू में आ जाए?
जहां से आपका उंगली रख लीजिए, जो जैसे मैं मेन्यू ऑर्डर करता हूँ ना, कई बार ये दे दो भैया।
अच्छा ठीक है, तो चलिए आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। सुनील, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? एक तो आपके बारे में इंटरनेट पे जितना अवेलेबल है वो कैरेक्टर्स की बात ज्यादा है, सुनील ग्रोवर कम है। तो आज मैं सुनील ग्रोवर की बात करना चाहता हूँ। शुरुआत कहाँ से होती है सुनील ग्रोवर की?
मैं एक छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत सा, मंडी डबवाली, हरियाणा में आता है, लेकिन पंजाब और राजस्थान बॉर्डर बिल्कुल सट के हैं, तो मैं पढ़ने पंजाब जाता था। हरियाणा में मेरा जन्म हुआ, रहता था और मैं हूँ पंजाबी। और तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था पर ड्रामे ज़्यादा करता था। और फिर कॉलेज में चंडीगढ़ से किया मैंने, और बीच में कुछ अर्सा हम लोग दिल्ली भी रहे, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो फिर मैं वापस वहाँ पे डब्बावाली में आ गए, फिर वहाँ से दिल्ली आ गए। और दिल्ली में आके मैंने कुछ 9 महीने 10 महीने न्यूज़ चैनल में नौकरी की। उससे पहले मैंने मास्टर्स किया था ड्रामा में BCom फिनिश करने के बाद। तो फिर मैं 9 महीने बाद दिल्ली में बिताने के बाद मैं मुंह उठा के मुंबई आ गया।
अच्छा, इस बीच एक चीज मैंने देखी कि आपके करियर में जसपाल भट्टी साहब का भी रोल रहा शुरुआत में।
जी जी, मैं चंडीगढ़ में जब पढ़ता था कॉलेज में तो भट्टी साहब के यहाँ ऑडिशन चल रही थी। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, चंडीगढ़ आया ही था, अभी BCom कर रहा था, तो वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे, मैं ऑडिशन देने गया था। और फिर उन्होंने मुझे अपने जो गैग्स थे, एक शो बना रहे थे उस वक्त, वो फुल टेंशन जो DD पे आता था, तो उसमें मैं उनके साथ छोटी छोटी भूमिकाएं करता था। और वहाँ से मेरी एक्चुअली क्राफ्टेड ह्यूमर की पहली बार इंट्रोडक्शन हुई। मैं करता था टीचर्स को मिमिक करता था, अपनी तरफ से स्किट्स बनाता था और वो प्रेजेंट करता था स्कूल कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में। लेकिन भट्टी साहब के साथ जब मैं काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि ह्यूमर क्रिएट किया जाता है और किस तरह कहा जाता है एक बात को, तो वहां से उसकी इंट्रोडक्शन हुई मेरी लाइफ में।
अच्छा सुनील, मुझे ये बात पर्सनली भी समझनी है कि जब आप एक छोटे शहर से आते हैं, खासतौर पे इस पैंडेमिक के वक्त में आप देखिए कि छोटे शहर के लोग सबसे ज्यादा परेशान थे कि कहीं इस भागा दौड़ी में जब कंपनीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं तो शायद उनकी जॉब पहले चली जाएगी, पर हुआ उल्टा, वो लोग ज्यादा टिके रह गए, बाकी लोगों के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई, जो खैर इस पैंडेमिक की वजह से हुआ। बट एक छोटे शहर का इंसान, एक लड़का ख्वाब कैसे देखता है और उस ख्वाब को तय करने के लिए, वो जो रास्ता है पूरा सफर का उसे तय करने के लिए उसके जहन में क्या चल रहा होता? सुनील के जहन में तब क्या चल रहा था?
कोई सोच नहीं होती इसके पीछे, मेरी तो कोई सोच नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा और मेरा ये प्लानिंग होगा। एक आई थिंक एक ख्याल होता है, जैसे दोनों ही सेम वर्ड है, बट एक मेरा मतलब स्ट्रैटेजी नहीं होती उसके पीछे कोई, उसमें सिर्फ एक आ जाता कि यार ये कर लें तो अच्छा है, हो जाए तो मजा आ जाए। और फिर जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में मैं कर रहा था तो एक्नॉलेजमेंट मिलती थी, तो मुझे लगता था यार इसकी ट्रेनिंग तो मिल जाए अगर मैं, तो मैंने इसीलिए बी कॉम करने के बाद मास्टर्स किया ड्रामा में 2 साल, कि मैं चाहता था कि विधिवत इसकी अगर ट्रेनिंग शिक्षा मिले, हालांकि मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं ले पाया वहाँ से जितना अवेलेबल था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता चला उस दौरान, तो ऐसा कोई मतलब जैसे अलमारी में हाथ फंसाने वाली बात है अंधेरे में ना, तो आप कपड़े ढूंढते रहते हैं कि ये आ गया आपके हाथ में, ये आ गया, तो वो हाथ फंसाना एक चांस लेना है, नहीं तो आप यही कह सकते हो कि यार अंधेरा है कपड़ा नहीं मिलेगा, या पर आप फिर सोचते हो कि यार हाथ फंसा लेता हूँ, देखता हूँ अगर उसके बटन से मैं पहचान जाऊंगा कि ये वो वाली शर्ट है या ये टी शर्ट है, तो ऐसे तो फटे में टांग फंसाने वाली या तो अंधेरे कमरे की अलमारी में हाथ देने वाली बात है, तो वो मैंने दे दिया, तो वो चीजें फिर आप सर्च करते चले जाते हैं। और
पर अलमारी में हाथ डालना होता है,
अलमारी में हाथ तो डालना होता है, अगर आप हो सकता है उसके अंदर कोई कॉकरोच भी हो करके बाहर निकल जाए आपका हाथ, या हो सकता है आपको शर्ट पहले मिल जाए, या हो सकता है वो शर्ट वहां हो ही नहीं, तो फिर आपको खाना चेंज करना पड़ेगा या अलमारी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन हाथ तो डालना पड़ेगा।
सुनील मुझे एक बार बताइए, कई बार जब हम जैसे लोग ये ख्वाब रखते हैं कि चलो मुंबई जाके स्ट्रगल करते हैं, ये अपने आप में ना एक बड़ा अच्छा ख्वाब है जो इंसान देखता है कि चलो मुंबई जाके स्ट्रगल करेंगे, और उस स्ट्रगल के पीछे जितनी कहानियां हैं कि स्टेशन पे सोना पड़ गया, वड़ा पाव खाकर जिंदगी गुजार रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, घर नहीं था, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सुनील जब बॉम्बे आए तो उनके स्ट्रगल में क्या क्या चीजें शामिल थी।
ये सब होती हैं जो आपने कही, जैसे शुरुआत में मैं जुहू में आया था, मैं कुछ वहां काम कर रहा था, जैसे भट्टी साहब के साथ काम कर रहा था, मैं कुछ लाइव शोज भी कर रहा था, मैं जैसा आप कह रहे थे जब हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि आप फ्रीलांस एंकरिंग होस्टिंग करते थे इवेंट्स, मैं भी कर रहा था, वो तो कुछ पैसे मैंने जोड़ लिए थे, तो यहाँ पे आया तो एक साल तो मैंने बहुत, मुझे लगा काम शुरू हो जाएगा मजा करेंगे, पर एक साल जो है पहले मुंबई देखते हैं एंजॉय करते हैं रहते हैं ठाट से, लेकिन जुहू मैं एक साल के बाद अफोर्ड नहीं कर पाया तो मैं गोरेगांव आ गया, गोरेगांव ईस्ट में, और वहाँ से जो आपने कहा जिस सारी तरीके जो है वो बस स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर जाना के एक्स्ट्रा 1 रुपया लगेगा तो यहीं उतर जाते हैं बाकी पैदल चले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें थी, और पर मैंने उन चीज़ों को भी इंजॉय किया, मैंने कभी उस चीज़ को जैसा टिपिकली कहते हैं, बहुत टिपिकल जर्नी है मेरी, कोई ऐसा विशेष जर्नी नहीं है कि मैं कुछ अलग लोगों को कहानी बताऊंगा, जैसी हर इंसान की होती है वैसी ही जर्नी है मेरी अभी तक की, जैसे ये, पर मैं खुश रहता था, मुझे लगता था कि ये एक्सपीरियंस है मेरे लिए, जीवन अचीवमेंट्स के साथ साथ एक एक्सपीरियंस का भी नाम है कि अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की जाएं, और मुझे लगता था कि ये एक्सपीरियंस जो है ये दोबारा नहीं आने वाला, तो सीढ़ी चढ़ने का, 4th फ्लोर फ्लैट में रहता था तो ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं आएगा, एक 1 रूम किचन अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये दोबारा नहीं आएगा, तो इसको अच्छे से जी लो, इसका मजा ले लो, कपड़े धोने का, कपड़े सुखाने का, तय करने का।
ये बहुत प्यारी बात कही आपने कि जिस चीज से इंसान भागना चाहता, आपने कहा कि ये लम्हा जीना चाहिए क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। आपने जो ऊंचाई देखी है उसमें आप इतने मॉडेस्ट हैं शुरुआत से, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसको जीना चाहिए फिर से। सुनील,
क्योंकि उस वक्त खूबसूरती भी है निशांत, वो एक्सपीरियंस है, अभाव का जीवन भी तो जीवन है ना, उसमें आपकी चाहत जिस पीक पे होती है तो वो कितना खूबसूरत है, और जब आपकी चाहतें पूरी होने लगती हैं, हालांकि बहुत से अरमान होते हैं हम सब लोगों के, लेकिन जैसे जैसे एक एक करके धीरे धीरे जो चीज़ें आप उम्मीद कर रहे थे आपकी जर्नी में आपको मिलने लगती हैं, तो फिर वो चली जाती हैं, आपको मिलता कुछ है लेकिन जब भी कुछ मिलता है तो कुछ लेके चला जाता है आपसे, और वो खूबसूरत एक्सपीरियंस आपके साथ रह जाते हैं, बट वो दोबारा आपको अनुभव करने को नहीं मिलता।
अच्छा एक सवाल है जो आपके दिल के बेहद करीब होगा, अगर आप चाहें तो उसका जवाब नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं इस सवाल को। ये सवाल है राज बर्मन का, जो ये पूछ रहे हैं कि सुनील ग्रोवर जी से आप एक सवाल ये पूछे कि ये एक मतलब इनका सवाल काफी बड़ा है, मैं छोटे कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं। इन्होंने ये कहा कि ये एक एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम कर रहे थे और पिछले महीने इनकी जॉब चली गई इस वजह से क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इशू आ रहा था, और इन्होंने कहा कि अभी मेरे पास कोई नौकरी है भी नहीं लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। उस वक्त कई बार मन में ये भी ख्याल आ जाता है कि यार आपने ताव में तो छोड़ दिया लेकिन इसके आगे क्या। सुनील ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा वक्त देखा है, मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे हैं उसका मायना क्या है, मैं पर्टिकुलरली उस बारे में बात नहीं करना चाहता, बट क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मार के जो कुछ समय का फायदा वो चल सकता है या फिर इस मामले में सुनील ग्रोवर हो जाना चाहिए?
जो आपकी अंतरात्मा कहती है, आपकी सबकॉन्शियस कहती है, जो तो आपने कुछ डिसीजन लिया होगा, सोच के लिया होगा आप तो, और एकदम से भी लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लिया डिसीजन और आपको उस वक्त खुशी मिली कोई भी डिसीजन लेके, तो हो सकता है वो डिसीजन सही हो गलत हो पर आपने लिया, सो फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड लिव विद इट। एंड वो अगर आपका विश्वास है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वो डिसीजन लेके, आपको मजा आ रहा है, तो फिर वो सही है। कुछ समय बाद भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हर डिसीजन की अपनी, चाहे आप ये डिसीजन लें या वो डिसीजन लें, उस दोनों में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, दोनों में आने वाली हैं, अलग तरह की होंगी तो, या दोनों में अलग तरह के सुख होंगे। तो जहां आपका मन कह रहा है वो करें, आप अपने मन की सुने और वो डिसीजन करेक्ट होता है। और मैं तो, मेरे पास दिमाग ज्यादा है नहीं तो मैं ज्यादा लगाता भी नहीं हूं, क्योंकि है ही नहीं चीज, वो कहां से लगाएगा। सो मेरे पास एक छोटा सा दिल है, उससे मैं दिमाग इवैल्यूएट ना करते हुए मन में जो आता है मैं कर लेता हूं।
इस पैंडमिक में कई लोग ऐसे हैं जिनका हौसला बहुत टूट गया, अब वापस उठने की कोशिश कर रहे हैं
जी।
सुनील ने पैंडमिक को कैसे देखा, आपके जहन में क्या ख्याल आया उस वक्त जब ये पूरी चीज हुई?
सबसे पहले तो खेद व्यक्त करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके परिजन, परिवार वाले उनसे बिछड़ गए इस पैंडेमिक के दौरान, और वो तो लॉस कोई भी कवर नहीं कर सकता। बेहद दुख है मुझे इस बात का, और मेरे भी कई जानने वाले प्यारे परिवार वाले बिछड़ गए, तो उसके लिए तो बहुत बहुत खेद है मुझे उन सब लोगों के लिए जिनके साथ जीवन के मायने बदल गए उनके। पर बात यही है कि हमें वी हैव टू मूव ऑन, और हमें अब जीवन को आगे लेके जाना है ही है, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अगर हम लोग अभी, ये तो ईश्वर की मर्जी है जो जैसा जिसके साथ हुआ, तो अब उसके आगे चलना होगा। और मैंने इस दौरान कई बार, जब आप बॉल आपकी बैट पे नहीं आ रही है तो क्रीज पे टिके रहना जरूरी है, कोई बात नहीं जब आएगी तब हम लोग शॉट मार देंगे, तो और कई बार आउट भी हो जाते हैं आप, ठीक है, नई पारी की वेट करते हैं, इस टाइम खेलते रहना, फॉर्म में रहना, फॉर्म चली भी गई तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा उसको लेके आइए अपने जीवन में, प्रैक्टिस करते रहिए, टिके रहिए आप जो कर रहे हैं। कई बार स्थिर होना भी जरूरी हो जाता है बने रहने के लिए, वरना आप पीछे चलते रहते हैं, पीछे चले जाते हैं, वहां टिक जाओ, वहां ही रुक जाओ, कोई बात नहीं, जब मौका आएगा तो हम लोग चल पड़ेंगे, जब चीजें शांत होंगी, चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं होपफुली, अगर लोग, हम सब लोग मिलकर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें तो चीजें बेहतर होंगी और बेहतर।
सुनील के लिए स्ट्रगल के क्या मायने हैं?
स्ट्रगल तो सारे जिंदगी सारा जीवन सब लोगों के लिए चलती रहती है. तो बाबा नानक की एक थ्योरी है कि नानक दुखिया सब संसार, कि उन्होंने बात बड़ी प्रोफाउंड कही है कि सबके अपने अपने ग्रीव्स हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने कष्ट हैं, तो वो तो सबके साथ ही हैं. चाहे वो अंबानी साहब हों, उनके लिए भी होंगे कि लाखों लोगों की सैलरीज जानी है तो यू नो बर्डन है. अगर आप एक कोई मिनिस्टर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो आप किसी लेवल पे पहुंच भी जाते हैं, तब आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लोगों का जीवन बेहतर बनाना है. उस अचीवमेंट के बाद एक नए स्ट्रगल्स के मायने तरीके बदल जाते हैं, लेकिन वो तो सारी जिंदगी चलती रहती है. तो अगर वो पार्ट ही है हमारा किसी ना किसी तरह की स्ट्रगल, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ आप चलते चले जाएं तो मजा आएगा.
मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी जिंदगी को ऐसे बताया, कई बार मैंने जब आपके बाकी इंटरव्यूज भी देखे, आपने कहा कि बड़ी ऑर्डिनरी सी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ कितनी ग्लोरीफाई करके कैसे बताऊं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जिससे मुझे बहुत सबक मिला है. जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस वक्त आप चैनल में थे, जिस वक्त आप कॉमेडी नाइट्स कर रहे थे, गुत्थी का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया. हर घर में बच्चा गुत्थी 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 चारों तरफ नाम है. जब आप इस बीच में एक अपना शो लेकर आए और उसके बाद जब चैनल पे आप वापस आए, तब जब चैनल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था कॉमेडी नाइट्स का, और उसके बाद गुत्थी वाला कैरेक्टर पेटेंट था, उनकी तरफ था कॉपीराइट, आईपी उनके पास थी, तो आपको फाइनली एक नया कैरेक्टर डेवलप करना था, और आपने डॉक्टर गुलाटी किया. एंड ये वही वाली बात हो गई कि किसी लकीर को छोटा करना है तो उसे मिटाने की जरूरत नहीं, उसके सामने बड़ी लकीर खींच दो. और मैंने आपकी जिंदगी से सीखा है कि एक कैरेक्टर जो आपको नाम शोहरत पहचान दे रहा है, सुनील ग्रोवर से ज्यादा बड़ा नाम बन गया है, वो कैरेक्टर आपके पास से चला गया और आपने एक वापस से जिंदा किया अपने अंदर से, ये मेरे लिए एक बाउंस बैक है. ये कहानी कैसे देखते हैं सुनील, आप इस बारे में बताइए.
वही जैसा आपने कहा, लकीर हम बड़ी खींचने की कोशिश करते हैं पर वो खींच पाती है नहीं खींच पाती है, लेकिन हमें अगेन को हाथ देना जरूरी है कि आपके हाथ में आए या ना आए पता नहीं, पर वो हाथ देना बहुत जरूरी है अलमारी में. तो अलमारी में हाथ देना ही था और अपने ऊपर विश्वास रखना. और मेरे तो लाइफ बहुत सॉर्टेड है दिमाग में कि एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है ना, पराजय भी या वो भी तो एक एक्सपीरियंस है ना, वो भी तो आपको एक लर्निंग दे के जा रही है ना. तो उसको संजो के उसको अपने पास रख के आप आगे चलें, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही करेगी अगर आप उसे पॉजिटिवली लेंगे तो. और ये बड़ी कही हुई बात है, बहुत से लोग कहते हैं, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि और कई अलग अलग मुकामों पर. ये तो चलो पब्लिक आई की बात है कि एक कैरेक्टर किया और दूसरा कैरेक्टर आया और ऐसा हुआ, लेकिन कई चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं जो पब्लिक नहीं होती, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें पीछे धकेलती हैं या आगे लेके जाती हैं, पर वो हमारे हाथ में नहीं है. वो हाथ देना इन द सेंस अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहना बहुत आवश्यक है.
जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया सुनील जब आपको लगा कि अब क्या, इसके आगे क्या?
बहुत बार आता है ऐसा.
कोई एक जो अगर आप शेयर करना चाहें जो आपके जहन में सबसे ऊपर है.
अभी जैसे मैं जब भी टेलीविजन में, मैंने बड़े सारे वॉइस ओवर्स किया, रेडियो के साथ भी जुड़ा रहा भी, उसके बाद एक उससे पहले एक्चुअली वॉइस ओवर्स कैसे शुरू हुआ, मैं टीवी में एक टीवी शो था जिसके अंदर तीन किरदारों की कहानी थी और मुझे वन ऑफ द कैरेक्टर्स में कास्ट किया गया, और मैंने दो दिन शूट किया और तीसरे दिन नया शो था और मैं घर से तैयार होके अपना रोज जाता था शूट पे. तीसरे दिन मुझे कॉल टाइम नहीं आया कि इतने बजे शूट पे आना है, तो मैं इंतज़ार कर रहा था. तो मुझे बाद में शाम को पता चला कि मुझे उस शो से रिप्लेस कर दिया गया, तो मेरी जगह तो कोई और एक्टर शूट कर रहा है. सो दे हैड डिसाइडेड दो दिन मेरे साथ शूट करने के बाद, और मैं बहुत खुश था उन दिनों कि मुझे कुछ अरसे ट्राई करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है. तो वो जो, तो मेरे सेल्फ डाउट शुरू हो गए निशांत के मैं एक्टिंग कर पाता हूँ, अगर दो दिन करने के बाद उनको लग रहा है कि ये आदमी इसके काबिल नहीं है या ये नहीं कर सकता, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस हिल गया कि यार ये कैसे होगा। और मैं तो मुंबई आया हूँ, 2 साल हो गए, उसके बाद मुझे टीवी शो मिला था, और अब मैं वापस क्या बोलूँ कि मैं तो सबको बोल चुका था कि मुझे टीवी शो मिल गया, सबके फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ गए कि यार वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, हाँ वन ऑफ द लीड रोल्स है, और 2 दिन शूटिंग में की रिपोर्ट भी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको देता था, आज बड़ा मज़ा आया, आज ये सीन किया, आज ऐसा हुआ, और थोड़ा सा इसने ऐसा बोला वैसा बोला, तो सब तो अगले दिन शूटिंग पे बुलाया नहीं गया। फिर मुझे एक जगह ऑडिशन के लिए बुलाया किसी ने 20 दिन बाद। निशान मैं वहां देने गया, मेरे से एक लाइन नहीं बोली गई। मैं याद करके सीन तैयार करके कैमरा के आगे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे तो ये था कि अगर मैं ऑडिशन क्लियर भी हुआ तो, पर मैं तो अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मेरे में तो काबिलियत नहीं है, तो मुझसे एक भी लाइन नहीं बोली गई। और मैं ट्राई कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं ट्राई कर रहा था, कि मैं मुझे लगता था ये चांस है और मैं अपना बेस्ट दूँ। और जिस बंदे ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था उसने तो काफ़ी विश्वास से बुलाया था कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई काम किया था उनके लिए जो अच्छा हो। तो वहां पे मेरा बहुत, फिर मैं आया, फिर सेल्फ डाउट, क्योंकि 20 दिन लग गए थे उस बात को ऑडिशन देने तक, और फिर उसके बाद मैं हिल गया।
तो जब शो आया, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जब वो शो आया तो एक मन में ईर्ष्या भी होती है कि, और एक सेल्फ डाउट की वजह से हम चेक भी करने की कोशिश करते हैं कि जिसने मुझे रिप्लेस किया जरा मैं वो देखूं तो ये कर क्या रहा है।
उसका टाइटल देखा था और तो मुझे उन लोगों से ईर्ष्या नहीं थी उस वक्त, मुझे ये था कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया ये, या तो मुझे एक्चुअली रीजन समझ में नहीं आया। और मैंने सोचने की कोशिश की, जानने की कोशिश नहीं की कि मैं पूछूं चैनल वालों से या प्रोडक्शन हाउस से कि क्या कारण था, मैंने नहीं कोशिश की, मैंने उसको शायद उस वक्त अपने सेल्फ डाउट में ले लिया था कि मेरे में शायद कुछ कमी होगी या मैं ही नहीं कर पाया, हो सकता है कि मैं नॉट गुड इनफ। तो और उस वजह से, शायद उस थॉट की वजह से मेरी जर्नी 3-4 साल लंबी खिंच गई। अगर मैं थोड़ा जल्दी ढीठ बन जाता, जो मैं बाद में बना, फिर मैंने दूसरा रूट ले लिया, फिर मैं वॉइस ओवर्स करने लगा और आवाज़ भरने लगा, और वहाँ पे भी कई बार रिजेक्शन होते थे, लेकिन लगा रहा मैं छोटा मोटा काम। और आग तो थी कि करना तो है, तो फिर वहाँ से मेरा एक बस वो था कि मैं जैसे कोई ऑडिशन के लिए बुलाता था मैंने जाना बंद कर दिया था, मैं कहा मेरे से नहीं होगा यार, मैं नहीं, मेरे में काबिलियत नहीं है वो। तो फिर एक शो वॉइस ओवर्स की वजह से ही मिला मुझे टीवी पे, लल्लन, जिसके अंदर मैं अलग अलग भूमिकाएं निभाता था। वो भी इसलिए मिला क्योंकि मैं अलग अलग आवाज़ें डब करता था, तो किसी ने कहा कि यार ये आवाज़ भी डब करता है और इसका बॉडी लैंग्वेज भी करेक्ट वैसा हो जाता है, तो क्यों ना हम इस शो में इसको ट्राई करेंगे। तो फिर वो मुझे शो मिला।
ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और अपडेट्स चाहते हैं, तो रीच आउट कीजिए ना हमें। देखिए, फीवर FM ऑफिशियल इज आवर हैंडल, और HT स्मार्टकास्ट, ये दो हैंडल हैं जो आपके काम के। हम FB पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, क्लब हाउस पे है, हर जगह मौजूद है। तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, और आप और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अगर सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू htsmartcast.com और सुनिए नए नजरिए से। बाय बाय।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HT Smartcast।